कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
स्थान है कि हमने अगर पुण्य करने पड़ेंगे इस शरीर से तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा, 10 रुपए भी लगाने पड़ेंगे, तब हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और साधना हमारी शास्त्र अनुकूल हो। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ना हो तो तब हमें पुण्य मिलेंगे और पाप बराबर में लिखे जाएंगे। पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, परम संत के माध्यम से हैं, तब तक हम जो साधना करते हैं चाहे वो शास्त्र अनुकूल भी क्यों ना हो तो भी हमारी दोनों लिखे जाएंगे, पुण्य न्यारे पाप अलग, और दोनों ही हमें प्राप्त होंगे। उन भक्ति वाली साधनाओं का तो स्वर्ग महास्वर्ग में जिस झूठे सुख को हम सुख मानते हैं वहां मिलेंगे, और जो पाप अलग लिखे हुए हैं वो मिलेंगे हमने नरक में या फिर 84 लाख योनियों में, या फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होगा उसमें भी कुछ मिश्रण किया जाता है पाप और पुण्यों का। तो कहने का भाव ये है कि जहां हम रह रहे हैं वो और जिन भगवानों को हम पूज रहे हैं उनकी पूजाओं से हमारे संचित कर्म नहीं कट सकते। प्रारब्ध का जो कर्म, प्रारब्ध का कर्म वो होता है जो हमारे जीवन में लिख दिया जाता है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, किस्मत, वो दोनों भोगने पड़ेंगे। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद ये परमात्मा कहते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगहारी असी बंभारी असी। अंगारी माने अग माने पाप, अरी माने शत्रु, पापों का नाशक। वो कबीर है, कबीर देव का हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। बमभारी माने हमारे कर्मों के बंधन को काटने वाला, बंबर माने बंधन और अरी माने शत्रु, बमभारी। तो बमभारी जो बंधनों का शत्रु है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और वो रित धामा सवर ज्योति रित धामासी, वो स्वयं प्रकाशित है उसका शरीर परमात्मा का, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है ऐसे ही परमेश्वर का शरीर स्वयं प्रकाशित है, साकार है, मनुष्य सदृश है, नराकार है, मनुष्य तुल्य है वो। और वो सतलोक में रहता है, अपनात्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में बोला था, कबीर वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वेद मेरा भेद है, मेरी ही जानकारी मेरी महिमा का गुणगान वेद कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख लिखा है, और पांचवा जो वेद था सूक्ष्म वेद जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी पांचवां वेद था उसको नाश कर दिया इस काल भगवान ने, कि कहीं इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको भगवान का पता ना लग जाए और इस साधना को करके ये मेरे जाल से निकल ना जाए। इस दृष्टिकोण से इस काल भगवान ने वो पांचवां वेद नाश कर दिया। उस पांचवें वेद के नाश की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से, और फिर वो जानकारी देते हैं खुद आकर के। वो कहलाती है सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन जो 25 से लेकर और 31 तक जिन मंत्रों के श्लोकों में जो व्याख्या है, कोई तो योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी बनकर मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरां घूमता है, कोई जीव इंसाना हो जावे ऐसी साधनाएं करते हैं, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अपने श्वास उस श्वास पर ध्यान देता है कि श्वास बाहर जाता है वो श्वास अंदर आ जाता है, इस पर देखते रहो बस, यही क्रियाएं हैं, यही साधना है। ना देखोगे तो भी श्वास तो आवे जावेगा ना, तुम्हारे देखने तो के कला टूट गया उसमें, तो बिना ज्ञान के ये धक्के दे रखे थे, डड़े डवा रखे थे अपने से, ये साधनाएं ठीक नहीं थी, शास्त्र विधि को त्याग का मनमान्य आचरण था। तो कहता इन 25 से लेकर 30 तक जो ये श्लोकों में चौथे अध्याय के गीता जी में साधना या साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं और इसलिए वो कर रहे हैं, एक दिन उनको ये पता लग जाए गलत है तुरंत छोड़ देंगे वो। तो फिर कहा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो यथार्थ ज्ञान इन यज्ञों का जो यज्ञ कर रहे हैं ना परमात्मा पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन धार्मिक यज्ञों की अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी है सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे यानी उस परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोली है उस वाणी में, वो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है अपनात्मा, वो है सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और परमात्मा कहते हैं ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता। आपको दिखाते हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में कबीर अंगारी असी बंभारी असी, ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। इसके प्रकाशक कौन है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इस दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है, ये लेखक नहीं है वेदों का, केवल अनुवाद करता है जैसे गीता जी के घड़े अनुवाद करता है। और मुद्रक ये हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके पांचवें अध्याय के 32वें श्लोक में दिखाते हैं आपको, ये पांचवा अध्याय और ये है नीचे 32वां मंत्र 32। यहां देखिएगा उसी गसी, ये देखो कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोल देते हैं बै, अपने लैंग्वेज में हम बै बोलते हैं, कबीर अंगारी असी बंभारी अविसुर असी। अच्छा इसका इन्होंने अनुवाद किया है, ये देखेंगे, हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं, और अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, ये लिखना था आप पाप के शत्रु हैं, पाप नाशक हैं। अब ये अनुवाद करता महर्षि दानंद का अपना ज्ञान सिद्धांत था कि भगवान पाप नाश नहीं करता, इसलिए इसने यहां बात उलझा दी। और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है भगवान पाप का नाश कर देता है, वहां इसकी बसाई नहीं, ये लिखना था वो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, वो पापों का शत्रु कौन है? कबीर। अब इन्होंने इस इसको ये कबीर है, कबीर हम इसको कबीर बोलने लगे और इसने ये कर दिया, इसका कवि और अर्थ कर दिया कांत पर जय है। अब पहले हम इस और फिर बमबारी, ये देखो बमबारी, बम्ब आरी माने बम्ब माने बंधन, अरी माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, यानी हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं जो बंधन काट दे, बंधन तो छुड़वा दे। हम कबीर जी को, कबीर परमेश्वर को हम बमबारी यानी हम बंदी छोड़ कहते हैं। और इसको लिखने का फर्क है, या बंदी छोड़ लिख दे, बंधनों का शत्रु लिख दे, एक ही बात है। अब जैसे इन्होंने यहां जो गलती की है ना, यह गलत कर दिया ये, अगर या तो फिर कवि ये लिख देते यहां पर, वो कवि हैं बस, फिर भी हम मान जाते ना कुछ ठीक करने की चेष्टा की। कबीर का अर्थ कांत पर जय लिख दिया है, कोई बात हुई। अब जैसे ये यजुर्वेद है जिसको हम पढ़ रहे हैं और इसका कहीं पर व्याख्या हो, अब दिखाते हैं आपको। अब जैसे ये इसी यजुर्वेद का अब 36वां अध्याय है, ये देखो ये 36 अध्याय यानी 36 और इसका ये प्रथम मंत्र है ये रहा। इसमें ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द लिखा है। अब ये है यजुर्वेद के विषय में और इसका कोई अर्थ कर दे वो गलत करेगा, इसका यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, यो जैसा कि इस महर्षि ने ये ठीक किया यहां पर, ये है यजु, इसका यहां अनुवाद किया है, वहां मूल पाठ था। ये देखो ये यजु शब्द है और इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये सही अर्थ बना यहां पर। यदि इस यजु का अर्थ कर देते यज्ञ सतुतियों का संग्रह, तो के बेराव का के है संग्रह, यज्ञ सतुतियां लिख दे इसकी, यज्ञ सतुति, तो यजु का अर्थ यहां लिखना पड़ेगा कि वह है यजुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक, जहां इन्होंने कवि कर दिया उसको हमने कबीर देव कर पढ़ना पड़ेगा, कबीर देव लिखना था। देखो हम फिर आते हैं वही 5वें अध्याय के 32वें श्लोक पर, ये 32वां श्लोक यजुर्वेद का। अब यहां इसने जो कवि कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है, बस वो कबीर देव लिख देते, हम कबीर देव कहने लगे, देव को परमेश्वर, देव का अर्थ परमेश्वर होता है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव हैं। और देखो यहां लिखा है रित धामासी सवर ज्योति, रित धामा इन्होंने खुद लिखा है, रित धामा माने सत धाम युक्त, हम सत धाम कहो सतलोक कहो इसको, ये सतलोक रित धामा नो कारण यो फलाना, रित धामा माने सतलोक वाला, सतलोक का निवासी, वो कहते हैं ये फलाने गांव का है, यो फलाना वो गांव का है, तो ये ऐसे है कि वो रित धामा वो सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति देख के अड़ंगा कर रखे अनुवाद का, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित है परमात्मा है, वो रित सतलोक में रहता है, कबीर उसका नाम है और वो ही अंगारी है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है वो कबीर अंगारी असी, ये कबीर हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर हम लिखण भी कबीर लागे, पड्डी की मात्रा भी रख दे। अब परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहमपुर मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना है और नीचे लिखा है दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन, और इसका यहाँ अनुवाद करता है ये 9-10 मंडल है ये महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली। इसके 10वें सूक्त के 10वें मंडल के और सूक्त नंबर 49 में दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 49 इसका ये पहला ही मंत्र है, 49 सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं स्तुति करने वाले को, यानी पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा वेदों में लिख रहे हैं, और इसका अर्थ है कि अहम दा ग्रहणते पूर्वम स्वयं ब्रह्म करणम। अब पूर्ण परमात्मा कहता है ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने ही की। अब यहां देखो, इनका अनुवाद देखे, मैं स्तुति करने वाले को सनातन निवास योग्य लोक, सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं, मोक्ष भी प्रदान करता हूं और निवास योग्य सनातन लोक, सनातन ऐश्वर्य जहां जाने के बाद फिर कभी आपका सुख नाश नहीं होगा, वो प्रदान करता हूं। अहम ब्रह्म, ये देखो स्पष्ट, ये भी पढ़ना पड़ेगा हमना, नहीं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म करणम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूं। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, ऐ तरह गजब भाई, मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतपुरुष ने ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। फिर मूल संस्कृत पढ़ो, अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म को, करणों उत्पन्न करता हूं, मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूं। ठीक है, इन्होंने जहां थोड़ी बहुत गलती करी है अनुवाद में, उसको हम शुद्ध कर लेंगे अपने ज्ञान से। और यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है, ये वेद मेरी ही महिमा करता है, चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। यज्ञ दान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूं। करह करावे साईया मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। कहता सब ये दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़ गए हैं उनको मैं ही लाता हूं। यहां पर मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूं। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूं, हराता है यानी हराता हूं, यानी कहने का भाव यह है कि ये मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है और जो मेरी सतभक्ति करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, उनको सनातन लोक, सनातन माने शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूं। और वहां से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रहेगा, वहां सारे ठाठ ठाठ, मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किस चीज का भाव नहीं, निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं। और मैं अहम ब्रह्म करवणम करणम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूं, या वेद नहीं, यहां ब्रह्म को उत्पन्न करता हूं। और मह्यम वर्धनम महिमम, और ये जो वेद है वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सच मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दानक कबीर ने, जुलाहे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपना सतलोक दिखा लिया, सचखंड दिखाया, वहां सब स्थिति से परिचित करवाया, तब वो वापस आया, उसकी शरीर में वापस प्रवेश कर दिया आत्मा को, तब उसने जागृत होकर के कहा कि हे परमात्मा, हम तो इन श्री राम श्री कृष्ण वर्मा विष्णु महेश जी को ही सुप्रीम पावर मानते थे। हे मालिक, फिर ये तो वेद और जितने भी पुराण हैं ये सब झूठी हैं, इनमें इनके बारे में बताया कि अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। परमेश्वर ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही, झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बांचे पुराण 18, और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते, इस करके अज्ञान साधनाएं शुरू करवा रखी हैं और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया सृजनहारा। भगवान पर तुलसी के पत्ते चढ़ावे फल फूल चढ़ावे मूर्ति के ऊपर, कहते तो सृजनहार को भूल गए। तो इन वेदों में परमेश्वर की महिमा है, ये भी धीरे धीरे आपके समक्ष यथार्थ अनुवाद आवेगा। पहले तो आप जी को ये जो ना दृढ़ करे ये करना चाहता है ये दास, के आप जी ये समझे कि जो भी दास बोल रहा है वो सारी सच्ची है। उसके बाद ये दास इन वेदों का जितना आवश्यक है उनका अनुवाद करेगा और पहले आपको इसलिए इन्हीं के अनुवादित वो दिखाए जा रहे हैं मंत्रों के अनुवाद के, ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि न्यू कह रामपाल ने संस्कृत नाती और ये महर्षि दानंद के अनुयायी आचार्य ये संस्कृत के गाता थे, महर्षि भी दानंद भी विद्वान पुरुष था संस्कृत का गाता था, वो सही समझा है उन्होंने वेदों का, ठीक अनुवाद कर रखा है। तो पहले उन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद को दिखाकर फिर दास साथ साथ उनमें जो त्रुटि है वो आपके समक्ष पेश करेगा, फिर आपका समझ में आओगी, फिर आप दृढ़ हो जाओगे कि सचमुच कौन सा अनुवाद सही है कौन सा गलत है, फिर आप स्वयं निर्णय लेकर के दृढ़ हो जाओगे। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे हम कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, डगमग आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। आप आगे जाकर के मान लीजिए दो रास्ते हो जाते हैं, कहीं आप अकेले जा रहे हो, या तो आपके साथ गाइड हो कोई व्यक्ति जानकार हो, या फिर आपके पास मैप हो, उस मैप पर आप देख कर चल सकते हो कि ये रास्ता नहीं ये है, और मैप के बारे में आप दृढ़ हो कि सचमुच इसमें जो लिखा फाइनल है। तो ये हमारे सदग्रंथ हमारे मैप हैं, ये मैप आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो ये रास्ता आपका है ये नहीं है, और आप दृढ़ हो जाओ कि सचमुच ये, फिर आप डगमग नहीं हो सकते। अगर आपके पास मैप नहीं है आपने आप चल पड़े आगे दो रास्ते हो जाते हैं वहीं पर आप असमंजस में पड़ जाओगे, आंख मीच करते चल पड़ो किसी साइड में, वो दूसरी बात है। तो ऐसे इन सदग्रंथों का आपके रूबरू कराना ये दास अनिवार्य समझता है। अब बताया कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो परमात्मा ने अपने मुख कमल ते जो वाणी बोली, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी सत्य उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख से वाणी बोली उसमें बहुत विस्तार के साथ इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि गीता ज्ञानदाता ये काल श्री कृष्ण जी में बढ़कर बोल रहा है, इसमें प्रवेश करके बोल रहा है कि उस ज्ञान को तू, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकली है, यानी उसी परमेश्वर ने आके ये सच्चाई हमें बताई है कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, कौन परमात्मा है, तुम साधना क्या करते हो। तो वो परमात्मा की महिमा जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 49 में प्रथम मंत्र में आपने पढ़ा कि वो वेद जो परमात्मा कहता है पूर्ण ब्रह्म के इस वेद का इस ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की और ब्रह्म ने फिर आगे मेरी महिमा, क्योंकि ब्रह्म के अंदर परमात्मा ने 4-5 वेद फीड कर दिए थे, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दी जाती है पूरा का पूरा मैटर, फिल्म की फिल्म पूरी, ऐसे परमात्मा ने 500 वेद इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे वहां से। और फिर जैसे समय आने पर अपने आप मालिक के नियमानुसार इसके अंदर से श्वासों के माध्यम से वो सारे बाहर आगे प्रकट हो गए। अब अगर आज से 50 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष पहले ये दास ये बताता कि परमात्मा ने इसके कंप्यूटर में इसके काल के अंतःकरण में वो चारों वेद भेज दिए और फिर समय आने पर उसको आदेश अनुसार प्रक्रिया मालिक ने ऐसी की कि उसके श्वासों से आप निकले बार, तो ना दच्चा हो या बात, आज सारा यकीन होगा, विश्वास होगा आपको, क्योंकि आजकल आप जो टेक्निक देख रहे हो कहां से कहां डाउनलोड कर लेते हैं और एक छोटी सी चिप होती है इतनी और उसके अंदर कितना मैटर भरा होता है, उसको कहीं भी फिट कर दी जाए जिसमें वह डाल दिए, फिर उसे कितना डाउनलोड कर लो, पूरे पृष्ठ के पृष्ठ इतना बड़ा पुलंदा भर लो। तो ऐसा हुआ था, तो इसने जब देखा कि डाउनलोड इसने किया बाहर अपने कंप्यूटर से अंतःकरण से, तो पटाखे पर जो पांचवा वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें तो सारी जानकारी है, वे ऑफ वर्शिप भी इसने एक नहीं देखा, आप बताओ, उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया। और ये चार थे जो जिसमें महिमा तो थी भगवान की, इनको खत्म नहीं कर सका ये, इसमें भी महिमा है लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है। और इस वेद को समझना यहां के प्राणियों के बस की बात नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे विष्णु चाहे शिव जी, ये भी वेदों को नहीं समझ सके। ये तो वो परमात्मा स्वयं आता है, फिर स्वयं ही अपने द्वारा वर लिखी हुई उन ग्रंथों को स्वयं ही ठीक ठीक समझाता है। अब जैसे वेदों का जो निर्णायक ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला, अब उस वाणी से परिचित होने के बाद हमने वेदों को खोला और वेद बिल्कुल साफ हो गए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको संस्कृत भाषा के जानने वाले नहीं खोल सकते, इसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे किसी ने हिंदी सीख ली, फॉरेनर ने, अच्छा हिंदी में चाहे कुछ भी बन जा और शास्त्री बन गया, और उसने रामायण का ज्ञान नहीं, रामायण की स्टोरी का ज्ञान नहीं, और उसको कोई कहे के लिए आप इन तुलसीदास कृत चौपाइयों का अनुवाद कर दो, अड़ंगा करेगा वो, बेसिक विद्वान बना हुआ है। तो ऐसे ही इन विद्वानों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने, विद्वान तो होता जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ केवल कबीर परमेश्वर है, और सब भाषाओं का सब अध्यात्म ज्ञान से सबका जानकार था वो, और उनको अविद्वान कहते थे ये नकली विद्वान। अब संस्कृत भाषा के जानने से विद्वान नहीं होता, एक भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं होता, उसका ठीक है, उसको वो भाषा आती है, उसका मास्टर है बस। अब तत्व ज्ञान को नहीं समझ सके, जिस कारण से उन्होंने इनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं, और यथार्थ ज्ञान वही आकर देते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, मनुष्य की तरह चलकर आते हैं। अपने आत्मा इस काल भगवान ने इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों गुरुओं ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण कार्य या कोई जाति से नहीं है ये समझना चाहिए, क्योंकि हम वैदिक ज्ञान हर ज्ञान सुनते नहीं। ब्राह्मण का अर्थ जो गुरु पद पर होता है वो ब्राह्मण है, यानी जो ज्ञान देता है परमात्मा के बारे में, जिसको जानकार मानते हैं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने भगवान को जान लिया है। लेकिन वो ना जान रहे थे ब्राह्मण को, आवे थे ऋषि महर्षि थे नहीं, महर्षि को आवे थे, आज उनको महर्षि कहना पड़ता है लेकिन वो महर्षि के योग नहीं है, उनको ब्राह्मण कहना पड़ता है लेकिन ब्राह्मण के योग नहीं थे। जैसे मेरे गुरुदेव थे वो ब्राह्मण थे जाति के हिसाब से, हरियाणा में गांव पैंतावास दादरी के पास बड़ा पैंतावास और जिला भिवानी, उस बड़े पैंतावास के गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत रामदेवानंद कहते थे, वो संत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव की तरफ जाते हैं, छावला ऑन रोड पड़ता है। उस छावला गांव के जाट थे किसान, और वो काशी विद्यापीठ से चार विषय के आचार्य बन गए। वो पंडित चिदानंद कहलाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब उस हमारे दादा गुरुजी का जो आश्रम बना हुआ है गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास जिला सोनीपत में, उनके आश्रम के ऊपर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम, और हमारे गुरुदेव के जहां आश्रम है संत राम देवानंद जी आश्रम। तो यहां जाति से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो ये नकली गुरु ब्राह्मण जो गुरुपद पर थे, इनको कह कह का पता नहीं था, ये कहलाते थे ऋषि और महर्षि। तो ये समझ नहीं सके उस परमात्मा की अमरवाणी को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्सर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कैके का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है, वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा, वो जैसे कोई नौके साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है, और जहाज बना दिया, हवाई जहाज वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखा दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उनके वचन से सबको जो हो जाता, जैसे आप हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, एक उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बुढ़ा मुस्कुर तो का डमू में तो पत्थर बना देते हैं, और नो पटक दे पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे, तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी असमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया, तो समर्थ है उसको, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी, अरे ये निराकार बताओ भगवान को, अर्वेद के साकार है, निराकार है, मनु सदृश है वो। अपुनात्मा, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके, फिरा मोतिया बिंद्रे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है, जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं, जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपटंदा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86, भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है, और ये मुद्र के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका। ये अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो, कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था। पर वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को आके मिलता है। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला ददर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहां रहता हो भगवान 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़ कम 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है धूलोक यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है वहां रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहां बैठा है आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें ये है 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है, इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है, वह राजेव राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं, कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहां लिखा है, 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने योग्य है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को, ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने, इनको भगवान मिले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य दृश्य ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है, और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता ऊपर से गिरने का तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खींची आती है, उसी पर गिरती है, उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका की कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो उन्हें भगवान मिल लेगा, उन्हें तो काला मिल लेगा जहां ये रह रहे हैं। अब नौवे मंडल सुक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहां पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहां लिखना था आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहां यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर, वो इन्होंने किया भी है, महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुनात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बांचे पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, इन वेदों को पढ़ा कर तिर में ऋषि को आगे, इन कक्खा भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य यह सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड, वो कबीर देव काशी में, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छोड़ाने जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहेब ने फिर बताया कि सर्व कला सतगुरु साहेब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहेब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए, गरीबदास जी 280 वर्ष पहले लगभग सन 1727 में लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे और सन 1866 में न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए, जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यू हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू, उनके वचन से फिर यू हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सके। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते तो कौन से कहां थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था, तो यो हरियाणा बनवा दिया, रीविया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नु, इनको पता था मालिक का किस वाणी का कहां आवश्यकता पड़ेगी किस समय में। तो वो गरीबदास साहेब जी को परमात्मा मिले और वो कहते हो भगवान हरियाणा में आए भाई हमारे, हमें मिले, और वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, तो मनु सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहेब ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारे हुनियार का हमारे जैसा, हमारा स्वरूप हमारे जैसा स्वरूप है, मनु सदृश है, और वेद बताते हैं कि वो नर आकार है, वो परमात्मा मनु सदृश है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वेदों में, और आपको अभी दिखाएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है मनुष्यवत अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि मनुना, हे मनुष्य के समान भगवान, मनुष्य तुल्य मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान मनुना, मनुना माने एक जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आते हो और ज्ञान का भंडारा खोल देते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 में मंत्र नंबर 11 में मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 में मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 का मंत्र 13 में लिखा कि मनुष्यवत शंभु, मनुष्य के समान है कल्याणकारक परमात्मा, शंभु माने भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 के मंत्र 21 में नरवत वरुण, नरवत हे मनुष्य कैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अंगिरा है, अंगिरा माने परमात्मा तेजो में शरीर युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद महर्षि दानंद ने कर रखा है, और इसने कोशिश की है कि मैं अड़ंगा अड़ाऊं और इसको खत्म कर दूं कि कोई पढ़ ना ले कि तय मनुष्य के तुल परमात्मा लिखा है। पहले इसी का दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र 17 में, ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद है, इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये है मुद्रक है सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स 1606 पटौदी औदरियागंज नई दिल्ली से, ये इसका मुद्रक बदल गया है पहले वाले से, ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त 31 इसका मंत्र नंबर 17 है, ये 17 इसमें क्या लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि, इसका अनुवाद इसका कहां लिखा है इसने, ये देखो मनुष्यवत, इसका अनुवाद क्या है महर्षिदान इसको क्या मनुष्यवत, और अग्नि को इसने अलग जगह लिख दिया, अग्नि अग्नि यहां कर दिया और मनुष्यवत को इसने यहां ले लिया, अग्नि पहले लगा दिया, तो इसने लिखा कि हे पवित्र अंगीर माने प्राण के समान धारण करने वाले, अंगीर माने भी परमेश्वर होता है, यहां लिखना था मनुष्यवत अग्नि, अंगीर है अंगीरस, अंगीरसवत अंगीर है, यातिवत सदने पूर्वम सुते, अब इसका अर्थ देखते हैं इनके द्वारा। हे पवित्र, प्राण के समान धारण करने वाले, यानी प्राणी की तरह आप आते हो परमेश्वर, क्या सब विद्याओं से सर्वतक व्यापक सभाध्यक्ष, यहां भगवान का नामो निशान मिटा दिया, सभाध्यक्ष लिख दिया अग्नि को। आगे देखो, आप मनुष्यों के मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, ये लिखना था मनुष्य के समान, मनुष्यवत मनुष्य के समान, आम आदमी पढ़ सके इसने, मनुष्य के समान हर वा शरीर, वा का क्या अर्थ होता अनुवाद करते इसने, या वा का अर्थ होता या के अर्थ कंटिन्यू होना चाहिए इसका अर्थ, शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल हंगीर से माने, आप एक साधारण मनुष्य की तरह ययातीवत, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, उस उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले हैं, इसका कोई सर पैर नहीं, कहीं पर भी देख लो अनुवाद का, इसका अर्थ है आप एक साधारण मनुष्य की तरह आते हो, और जैसे एक जन साधारण अपने हाथों से कार्य कर्म करके अपने कर्म काम करके उस तरह आप आते हो, और पूर्ववत है परमात्मा पहले की तरह फिर से आइए, आप ज्ञान देते हो हमें, आप फिर से यहां आइए अपने आत्माओं, अब ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो फिर आपको हैरान रह जाओगे कि भगवान बता, इसे भी मैं ऋषि अग्रजन ज्ञान को समझाने उसका अडंगा कर दिया, ये देखो इसकी और कलाबाजी दिखाऊं मैं ऋषि दयानंद की, कैसे बट्ठा बठा रखे अनुवादों का, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 का, ये ऋषि दयानंद का अनुवाद है, और मंत्र नंबर 11 इसमें क्या लिखा है, मनुष्यवत देव, ये इसने लिखा है। अब देव इस देखो, ये एक सेंटेंस है पूरा, एक मंत्र है। अब इस मनुष्यवत देव को साथ साथ अनुवाद में लेना चाहिए, इसने क्या लिया है, सबसे पहले यहां लिया देव और मनुष्यवत लिया लास्ट में, देख अडंगा करण का किसा बढ़िया तरीका इसका। हे देव, दिव हे दिव विद्या संपन्न अग्नि माने भौतिक अग्नि के सदृश उत्तम पदार्थों को संपादन करने वाले मेधावी विद्वान हम लोग, ये गर्थ है अग्नि माने सीधा लिख देता है परमात्मा, इन 20 जगह लिख रहा है, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के और सूक्त नंबर 96 में दिखाऊं इसने कितनी बार लिख रखा है अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, ये देखो, क्योंकि वहां भगवान के साकार का जिक्र ना था, मनुष्यवत नहीं था इनमें, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का मंत्र 1 से इन 9 मंत्र हैं इसमें, और 9 में तो 8 अग्नि है, अग्नि माने तो इन सब में परमेश्वर लिखा, अग्नि माने परमेश्वर व भौतिक अग्नि परमेश्वर लिखा प्रथम मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का दानंद का अनुवाद है, मंत्र नंबर 1 में अग्नि शब्द था, वहां पर अग्नि माने परमेश्वर, और दूसरे में ये देखो, दूसरे में अग्नि शब्द है परमेश्वर को, अब तीसरे में 1 के 96 का ये तीसरा मंत्र, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर लिख दिया, अब चौथे का अग्नि माने जगदीश्वर, और पांचवें में ये वही चल रहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 196 का, और ये 5 में अग्नि माने परमेश्वर को, अब 6 में ये 6 है इसका, आगे देखो ये 6 है, ये अग्नि माने परमेश्वर को, या 7 में अग्नि माने परमेश्वर को, 8 में अग्नि शब्द नहीं है, 9 में फिर देखो, 9 में ये वही है, कितने सोचा और कितने दिखा दिया है, ये जो 96 तो यहां 97 शुरू हो गया यहां से, इसलिए इस पृष्ठ पर 96 लिख दिया, नहीं यह 96 है, 1 के 96 का लगातार हम अब 9वां मंत्र देख रहे, अग्नि माने परमेश्वर, समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अब यहां इसका बिजली गिर गई, अग्नि मन परमेश्वर लिख दिया थी, साकार सिद्ध हो गया, मनुष्य जैसा लिखी रखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 पे, 44 के मंत्र नंबर 11 में यू लिख रहे मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर लिखना था, हे परमेश्वर आप मनुष्यवत मनुष्य जैसे हो, मनुष्य के समान हो, ये लिखना था। अब ये इसने यहां लिखा देव, इसका जो टांग पाड़ दी, यहां से वहां ले गया और इसको यहां ले आया, कोई बात हुई? जब एक कोई दोहा है, श्लोक है, उसके इसी सेंटेंस का इसी से अनुवाद होगा, यहां का यहां नहीं हो सकता, यहां बीच यहां का नहीं हो सकता, इसको वहां इसको यहां नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अज्ञान किया है। मनुष्यवत तो यहां लिख दिया, हे असभापति लिख दिया, मे दावी ये भौतिक अग्नि लिख दिया, अग्नि का भौतिक अग्नि के सदृश यहां लिखना था, हे परमेश्वर ये मनुष्यवत ये यहां लिखना था यज्ञ के, तो आप धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देने के लिए, साधन बताने के लिए परमात्मा आप परमेश्वर आते हो और गुरु रूप में आते हो, होता रूप में, ऋत्वजम रूप में, ऋत्वज बन के आते हो, और आप मनुष्यवत हैं, मनुष्य के सदृश हो, आपकी बुद्धि इसका कोई, आप ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हो। ये देखो अरियन लिख दिया मनुष्यवत, और यह मनुष्यवत यहां ले लिया और इस देव को यहां ठोक्या, ये अनुवाद होया, तेरा गजब हो और मैं ऋषि कवावे। इसे से बहुत प्रमाण है, लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है।